व्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1997 कुमारों से मुलाकात। अभी कुमार क्या करेंगे? कुमार 5000 आए हैं। बहुत अच्छा कुमार, कोई नई कमाल करके दिखाओ, ऐसी कमाल दिखाओ जो असंभव को संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे कुमार हीरो पार्ट बजाएंगे पक्का, यह हाथ उठाने तक। देखो हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए, डबल हीरो, बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टधारी भी, ऐसे हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1997। अभी कुमार क्या करेंगे? कुमार 5000 आए हैं। बहुत अच्छा कुमार, कोई नई कमाल करके दिखाओ, ऐसी कमाल दिखाओ जो, कौन सी कमाल? असंभव को संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करने चाहते हैं। ऐसे कुमार हीरो पार्ट बजाएंगे पक्का, या हाथ उठाने तक। देखो हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होने चाहिए, डबल हीरो, बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टधारी भी, ऐसे है। इस मुरली में 31 दिसंबर की मुरली 1997 कौन थे तब? बाबा चक्कर लगाए थे डायमंड हॉल का, राउंड लगाए थे। तो बाबा कह रहे क्या कार्य करके दिखाना है, कौन सी कमाल? असंभव को संभव करके दिखाना है। कौन से असंभव को संभव करना है? पवित्र रहना, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा तो पवित्रता की है। संसार जिसे असंभव समझता है, ये असंभव संभव हो चुका है, तो सबसे बड़ी कमाल तो ये है। और
मन पर पूरा नियंत्रण, मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण,
मन बुद्धि पर संपूर्ण नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, स्वनियमन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, स्वनिग्रह। तो स्वयं पर संपूर्ण निग्रह, स्वयं पर संपूर्ण निरंत्रण, स्वयं की भावनाओं पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर संपूर्ण नियंत्रण, कर्मेंद्रिय, वृत्ति, सब कुछ आ गया उसमें। तो ये है, इस असंभव को क्या करना है? संभव कर दिखाना है। और पुराने संस्कार, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, आज की मुरली में वरदान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। यदि यह स्मृति रहे तो दो चीजें होगी, एक तो रोशनी और दूसरा पुराने संस्कार रूपी कीटाणु भस्म होंगे। पुराने संस्कार के जो कीटाणु है तो भस्म होंगे, पर उसके लिए पावर चाहिए, ज्ञान और योग की पावर। यदि पावर कम रहेगी तो रोशनी जरूर जाएगी, परंतु कीटाणु भस्म नहीं होंगे। कीटाणु भस्म होने के लिए पहले स्वयं योग की तपस्या करनी है, इससे वातावरण भी परिवर्तन होगा, प्रकाश भी आएगा और पुराने संस्कार भी भस्म होंगे। तो समान कौन सा है? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। यदि भी किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस बदलने हैं, उसके लिए भी बाबा ने कहा है यही समान है। यदि पुराने संस्कार भस्म करने हैं तो समान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य में वो प्रकाश होता है नष्ट करने का, भस्म करने। परंतु जिस समान इतना अंदर समा जाए, केवल बाह्य मन में ना रहे, चेतन मन में ना रहे, परंतु वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, अवचेतन मन में ये प्रवेश कर जाए, इतना गहराई से उसका अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास तब करना पड़ेगा जब चेतन मन संपूर्ण शांत हो जाए, ताकि ये संकल्प उठते ही सीधा अवचेतन में बीज के रूप में चला जाए। उसके लिए चेतन मन को शांत करना अर्थात योग की जो प्रक्रिया है वही चेतन मन के संकल्पों को शांत करती है। तो सबसे पहला असंभव कार्य था संपूर्ण पवित्रता, तो असंभव को संभव करना। दूसरा कार्य था आत्मनिग्रह, कर्मेंद्रिय जीत बनना। तीसरा असंभव कार्य जो है वो है संस्कार, संस्कारों में क्रांति लाना। कर्म बंधन, तो पुराने जो भी है उसको भस्म करना, उसको परिवर्तन करना, उसको मोड़ना, ये सारे जो कार्य है ये भी वास्तव में असंभव जैसे कार्य है, परंतु ये कार्य तुम्हें करना है। चौथा कौन से कार्य है जो कि असंभव से है संसार में? कभी किसी ने सोचा नहीं था द्वापर से कि आकाश में भी उड़ा जा सकता है, एक स्वप्न था। दिखाया गया है कि जो कि केवल बाइसिकल मैकेनिक्स थे दो व्यक्ति राइट ब्रदर्स, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने स्वप्न देखा कि आकाश में भी उड़ सकते हैं और एरोप्लेन हवाई जहाज की खोज की। जो भी असंभव होता है वो पहले वो भी एक संकल्प ही है। मन में यदि आ जाए कि ये जो स्वप्न है, ये जो कल्पना है, ये संभव हो सकती है, तो वो स्वतः ही संभव होने लगती है। तो हर असंभव कार्य संसार का संभव हो सकता है। यदि किसी और ने करके दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। कल का वरदान क्या था? यदि निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं ने ये करके दिखाया, साकार में करके दिखाया, तो हमें भी ग्रहण करना आसान हो सकता है। कौन सी बातें? चाहे स्नेह हो, यदि किसी में स्नेह दिख रहा है तो हमें भी स्नेह आ सकता है। यदि किसी में सर्विस दिख रही है तो हमें भी सर्विस आ सकती। अगर किसी में त्याग दिख रहा है तो हमें भी वो त्याग आ सकता है। त्याग के बारे में कितना भी पढ़ो, भाषण दो, परंतु वो त्याग जीवन में नहीं आ सकता। जब ऐसा मूर्तिमंत उदाहरण हमारे सामने हो जिसमें त्याग कुट कुट के भरा है तो त्याग दिख सकता है। कर्म में सहयोगीपन की भावना, चार चीज, स्नेह, त्याग, सेवा और सहयोग, ये चारों ही यदि किसी के कर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ये प्रेरणा ही क्या बन जाएगा? वरदान बनेगा। और जब तुमको वरदान मिल जाएगा तो तुम भी मास्टर वरदाता बनोगे। असंभव संभव करना है। जो हम सोचते हैं ये संस्कार बदल नहीं सकता, उसी संस्कार पर कार्य करना है, उसी संस्कार को बदला हुआ देखना है। विजुलाइजेशन, देखना है स्वयं को कि मैं उस संस्कार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका हूं। वो पिक्चर रोज देखना है, रोज देखना, उसमें कलर भरना, उसको चलता फिरता देखना, लाइव देखना, साकार होते हुए देखना, संभव होते हुए देखना, तो असंभव स्वतः ही संभव होगा। तो पहला पवित्रता, दूसरा कर्मेंद्रिय जीत, तीसरा संस्कार, चौथा वो छोड़ के दूसरा चौथा कौन से असंभव कार्य है? मुरली को क्या कर? रखना, समझना, याद रखना, धारण करना, हमारे अंदर वो समा जाए, उसका एक एक अक्षर शक्ति बन जाए, उसका एक एक अक्षर अमृत की बूंदे समझकर अपने अंदर धारण करो, वो कोई पर असंभव सा कार्य नहीं है। याद रखना तो आसान है, धारण करना और समझना, उसका स्वरूप बनना, अगर देखा जाए तो ज्ञान का स्वरूप बनना एक रीति से थोड़ा बहुत असंभव कार्य है, परंतु सारे ही असंभव अभी संभव होने हैं। तो ज्ञान का स्वरूप बन जाना, ज्ञान समा जाना, ज्ञान का अनुभव करना जीवन में, यह भी जैसे कि एक असंभव सा कार्य है, यह संभव बन जाए। उसके बाद इंद्रिय सुख से परे चले जाना, इंद्रिय सुख, संसार सुख, भौतिक विकारों के सुख, इन सभी से ऊपर उठ जाना, विषयों के सुख सबसे परे चले जाना, यह भी संसार ने इसे असंभव समझा है। अंग्रेजी में चार शब्द है, एक है प्लेजर, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है जॉय और चौथा है ब्लिस। ऐसे चार शब्द है, चारों को हिंदी में अनुवाद न करते हुए उन्हीं को उसी रूप से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे निम्नतम स्तर पर जो है वो है प्लेजर, सबसे छोटा जो है इंद्रियों का सुख, कुछ खाया खुशी हो गई, कोई चीज को स्पर्श किया उतनी ही प्लेजर, वो केवल इंद्रिय सुख है, उसकी शुरुआत है और उसका अंत है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एंडिंग पॉइंट है, वो वहीं तक सीमित है, उसके पहले वो नहीं था, उसके बाद में वो नहीं है। काम विकार वो वैसा ही प्लेजर है, शुरुआत और अंत है उसका, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद केवल कल्पनाएं, उसके बाद केवल स्मरण, उसके बाद केवल कुंठित स्मरण, एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड, एक लंबा समय का दुख विषाद, फिर वही पाने की कामना, परंतु उसमें भी दुख, अपेक्षा परंतु दुख, जितनी अपेक्षाएं की थी उतना नहीं मिला, ये प्लेजर सबसे निम्न तल पर जो है, उसके थोड़े ऊपर है हैप्पीनेस, खुशी। हम इसको हिंदी में अनुवादित नहीं करेंगे, वही शब्द रखेंगे, हिंदी में सारे वही शब्द हो जाते हैं, प्लेजर निम्न तल, ऊपर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस थोड़ा इंद्रियों से ऊपर है, हैप्पीनेस थोड़ा मन के तल पर है, प्लेजर केवल और केवल इंद्रियों के तल पर है, केवल शरीर के तल पर है, हैप्पीनेस मन के तल पर है, भाव है यहां पर। कुछ किया समाज सेवा की, हैप्पीनेस, कोई अच्छा कार्य किया किसी की मदद की, हैप्पीनेस, कोई निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की, खुशी, हैप्पीनेस। प्लेजर से थोड़ा ऊपर है, और ऊपर है
आनंद,
इंग्लिश शब्द ही रखेंगे, जॉय। जॉय जो तो है वो थोड़ा हैप्पीनेस से ऊपर है, क्योंकि जॉय जो है वो किसी और पर निर्भर नहीं है, हैप्पीनेस फिर भी किसी और पर निर्भर है, किसी के लिए कुछ किया, किसी से कुछ मिला तो हैप्पीनेस मिली, इसमें सीधा इंद्रियों से संबंध नहीं है, मन के तल पर कार्य कर रहा है। फिलोसॉफर्स जो होते हैं उनके पास हैप्पीनेस होती है, उसके थोड़ा ऊपर जो है वो है जॉय, जॉय जो है वो थोड़ा हैप्पीनेस से परे है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की निर्भरता थोड़ी कम हो रही है। कवि कलाकार ये जो लोग है, या फिर हमारे ही मन में कभी कभी उस जॉय की फीलिंग उत्पन्न होती है, कुछ ऐसे क्षणों में जब बहुत ही निस्वार्थ सेवा की गई है, संपूर्ण निस्वार्थ। हैप्पीनेस तो आई है, पर उसके साथ साथ उसके भी ऊपर का एक भाव आया है, जो कि जो सेवा इतनी निस्वार्थ है कि जिसका कहीं कुछ भी नाम नहीं, केवल सेवा भी नहीं कहेंगे, जिसकी सेवा की उसे भी ये नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है। थोड़ा ऊंचे तल का है वो है जॉय। भक्त जाता है मंदिर में, उसे खुशी से भी ज्यादा हैप्पी जॉय मिलता है वहां पे। कवि एक कविता लिखता है, चित्रकार एक चित्र बनाता है, कोई प्रकृति के सानिध्य में कोई गीत लिखता है और गीत गाता है, वहां जॉय है। और सबसे ऊंचा जो है ब्लिस, रैप्चर, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में रैप्चर, एक्स्टेसी, बीएटीट्यूड। वो जो रैप्चर है, वो जो बीएटीट्यूड है, वो जो एक्स्टेसी है, वो है संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख, आनंद, परम आनंद। वो जो अवस्था है वो आनंद की अवस्था है, ब्लिस की अवस्था है। मैं ब्लिसफुल आत्मा हूं, आनंद स्वरूप संस्कार। आने वाले संडे में बाबा ने एक नए शब्द की रचना की है, आनंद स्वरूप संस्कार। आनंद स्वरूप संस्कार, आनंद स्वरूप स्मृति के संस्कार, ये तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार है। मैं आनंद स्वरूप हूं, जब बैलेंस रहेगा तब ब्लेसिंग, तब ब्लिसफुल होंगे, आनंद स्वरूप होंगे, और तब कहीं जाके दूसरों को ब्लेसिंग दे सकेंगे। कृपालु स्वतः ही बनेंगे, किस पर कृपा करूं ये संकल्प नहीं, कृपालु हूं, सभी पर कृपा करनी है। तो कहां से कहां तक पहुंचना है, प्लेजर। प्लेजर अर्थात कुछ खाया, टोली खाई और खुशी हो गई, बहुत अच्छी टोली थी,
दूसरी टोली प्रतीक्षा
और एक लंबी प्रतीक्षा आरंभ, कब मिलेगी दूसरी। एक बार अच्छा ब्रह्मा भोजन खा लिया अशोक भाई, उसके बाद में एक लंबा इंतजार, कब मिलेगा डबल। वो केवल प्लेजर मात्र है। हाँ, उस प्लेजर के साथ में, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि ये यज्ञ से मिल रहा है, क्योंकि ये भगवान के घर में मिल रहा है, तो वहां पर खुशी आ सकती है। कभी कभी एक और दो और तीन भाव एक साथ रह सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, मिश्रित भाव। तो प्लेजर और प्लेजर के साथ फिर साथ साथ हैप्पीनेस भी हो सकती है। पर हमारे कोई भी कर्म केवल प्लेजर के लिए ना हो, केवल और केवल इंद्रिय सुख बस। ये तो संसार की विकारी आत्मा सब करती है, ये तो संसार का भौतिकवाद है। ये संसारी आदमी भौतिक सुखों में डूबी हुई आत्मा, विलासिता के सुखों में डूबी हुई आत्मा, विलासिता में समाया हुआ ये संसार का कार्य है, केवल और केवल इंद्रियों के लिए कुछ करना, वो तो दुष्कर्म करने वाला वह व्यक्ति भी वही करता है। केवल और केवल इंद्रिय सुख, ये तो पशुता है, उसके ऊपर है सुख, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के भी ऊपर है जॉय, और जॉय के भी ऊपर है ब्लिस। हमारे सभी कर्म ब्लिस की अवस्था में हो, परम आनंद की अवस्था में हो। इस आनंद की अवस्था में जो कुछ भी होगा श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि ब्लिस की वह अवस्था देहभान से रहित अवस्था है। देह वहां है ही नहीं, ऐसी ऊंची वह अवस्था है। तो पांचवा संभव कार्य है इंद्रिय सुखों से परे चले जाना। इंद्रिय सुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, भौतिक सुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, ये विलासिता पूर्ण जीवन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। संसार की वस्तुओं में सुख, संसार के सामान और पसारा जो भी पड़ा है उसमें सुख, ये सब बहुत निम्न तल के सुख है। अध्यात्म के पथ पर चलता हुआ जो राही है उसका सुख बहुत ऊंचा है। उसे ब्लिस के अतिरिक्त और किसी में वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। ऐसी डिवाइन डिस्कंटेंट, ऐसा दैवीय संतोष निरंतर रहना चाहिए कि हमें और पाना है, और पाना है, और पाना है। अंग्रेजी में किताब लिखी गई है, स्टे हंग्री स्टे स्टे फुलिश, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। प्रणव का नाम बहुत ही अद्भुत है, गुजरात के किसी लेखिका ने ये लिखी है। उसमें कई सारे उद्योगपतियों का वर्णन है, स्टे हंग्री, हमेशा ही हंगर रहना चाहिए, हमेशा ही वो भूख, हमेशा ही वो प्यास, वो अभिप्सा ज्ञान को पाने की, स्थिति को ऊंचा उठाने की, कैसे और उस सुख को पाए जो इंद्रियों से अतीत है। वो हंगर, वो भूख, वो प्यास कभी भी कम ना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये पुरुषार्थ कर लिया इतना बहुत है। पुरुषार्थ में निरंतर असंतुष्टता, पुरुषार्थ में निरंतर वो डिवाइन डिस्कंटेंट, वो दैवीय असंतुष्टता, संसारवादी असंतुष्टता नहीं, दैवीय असंतुष्टता। इतना पुरुषार्थ काफी नहीं है, और करना है, और करना है। इतना सुख जो मिला है अतीन्द्रिय वो काफी नहीं है। सुबह अमृत वेले अमृत सुख को पाया है वो काफी नहीं है, फिर शाम को भी वही पाना है। शाम का भी काफी नहीं है, सारे दिन भर भी पा लिए पाना है। शाम का पा लिया, सुबह का पाया, दिन में पाया, वो भी काफी नहीं है, रात में भी वो पाना है। नींद भी अतीन्द्रिय सुख हो जाए, ब्लिसफुल हो जाए, वह ब्लिस हमारे जीवन में समा जाए सुबह से लेकर रात तक, चित्त में वो प्रवेश कर जाए ऐसे कि वहां से निकल ना सके। संपूर्ण जीवन ही आनंदमय अवस्था, एक आनंद का हंसता गाता मसीहा, ऐसी आनंदमय स्थिति। आज की मुरली में महावाक्य है, तुम प्रकट हुए हो इस धरती पर, ये तुम्हारा प्रागट्य हुआ है धरती पर रूहानी सेवा के लिए। प्रकट प्रकट होते हैं देवता, प्रकट होते हैं भगवान, प्रकट होती है महान आत्माएं, प्रकट होते हैं अवतार, वो तीर्थंकर, वो फरिश्ते, ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, वो बोधिसत्व, संसार की जो सर्व महान आत्मा है उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रागट्य, प्रकट। बाबा ने कहा है तुम प्रकट हुए हो, रूहानी सेवा के लिए। कितना ऊंचा शब्द प्रयोग किया है बाबा ने। तो पुरुषार्थ में वह दैवीय संतोष निरंतर बना रहे, ये कम है, ये कम है, प्यास रो, प्यास, ऐसी प्यास है समुंदर को पी जाने की, प्यास समुंदर को पी जाने की, प्यास डूब जाने की, प्यास। दादी जानकी कहती है ना, बाबा इतना मीठा है, ऐसा लगता है उसको खा जाऊं। क्या कहते हैं, इतना मीठा है कि पूरा उसको जैसे खा जाऊं। ऐसी प्यास, ऐसी ज्ञान की अभिप्सा, ऐसी हृदय में तड़प सब कुछ पा लेने की। अतीन्द्रिय सुख का यह सागर लहरा रहा है, इस प्यार को, इस सागर को पी जाना है। तो इंद्रिय सुखों का त्याग कर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर लेना। असंभव कार्य कौन सा करना है?
योग बल जमा करना
है। इतना योग बल जमा करना है कि जिससे विश्व परिवर्तन हो जाए। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के कार्य में तुम्हें, इस सेवा में तुम्हें मेहनत लगती है, ये देखकर बाबा सहन नहीं कर सकते। ये बाप दादा सहन नहीं कर सकते। तो स्वयं में इतना योग बल, स्वयं में इतना आत्मबल, स्वयं में इतना याद का बल, स्वयं में इतनी साइलेंस की पावर करनी है कि जीवन के सारे ही कार्य इस बल से, इस योग के बल से संभव होने लगे। तुम्हारे पास तीन इंजन है, कल सुना ना, तुम्हारे पास तीन इंजन है, एक नहीं तीन। तुम्हारे बुद्धि में गिफ्ट मिली है तुम्हें, कौन सी? कस्तूरी। सारे ही असंभव कार्य हमें संभव करने हैं। क्या चाहिए उसके लिए? संकल्प, केवल और केवल संकल्प। संकल्प कर लो कि ये करना ही है, होम हुआ ही पड़ा है। असंभव हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन कहता है कि इम्पॉसिबल शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में है, मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरती पर जो मैं नहीं कर सकता। केवल तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ति नहीं है, ऊपर से भी एक शक्ति कार्य कर रही है। हाँ, अगर खुदाई को, खुदा को यदि जुदा कर दो तो असंभव है। यदि सर्विस को गॉडली से अलग कर दो, केवल सर्विस हो जाए और गॉडली सर्विस ना हो, तब ये असंभव है। या ईश्वरीय सेवाधारी को, सेवाधारी अगर ईश्वरीय से सेवाधारी अलग कर दो, या अलग कर दो ईश्वर को सेवा से, तो असंभव है। परमात्मा को यदि अलग कर दो तो हो सकता है, असंभव है। परंतु तुम्हारे पास तुम्हारी तो शक्तियां है ही, साथ में वो भी शक्तियां, उन तुम्हारे नाम से ही क्या क्या हो जाता है संसार में। तो तुम अधिकारी हो, तुम्हारा साथी भगवान है, खुदाई खिदमत गार। तो सभी असंभव जो जीवन में है, सबसे पहले तो उसकी लिस्ट बनाओ कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने असंभव समझ रखी है। और अभी इस मधुबन भूमि में संकल्प करो, इस भूमि में संकल्प करने का बहुत महत्व है। यहां संकल्प करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा पावर बढ़ेगी। इस भूमि में ही बहुत शक्ति है, यहाँ की प्रकंपन ही बहुत शक्तिशाली है, यहाँ का संघ ही बहुत शक्तिशाली है। तो वो सारे ही असंभव कार्य क्या करने हैं? संभव करने हैं। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करने चाहते हैं। भगवान हमें विश्व की स्टेज पर रखना चाहता है। तो हमेशा समझो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूं, विश्व की स्टेज पर हूं और सारा विश्व मुझे देख रहा है, सारी ही दुनिया। यदि बाहर रास्ते पर चल रहे हैं तो सोचो कि आजू बाजू जो पहाड़ी है वहां लोग खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं। यदि कमरे में बैठे हैं तो चार दीवारी होती है कमरे की, चार दीवारी। सोचो ऊपर लोग बैठे हैं, वो होता है ना मैच, क्रिकेट का मैच, बीच में वो ग्राउंड होता है, आजू बाजू लोग होते हैं। तो कमरे में अगर है तो अरविंद भाई क्या सोचेंगे कि ऐसे ऐसे झुक झुक के लोग नीचे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये है वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहने वाले अपने आप को। ये है ईश्वरीय संतान अपने आप को कहने वाले। कैमरा चारों ओर लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है और लोग भी देख रहे हैं। कमरे में है तो सोचना क्या कि लोग
देख रहे,
भीड़ लगी है लोगों की, ऊपर से चारों तरफ से हमको देख रहे हैं, जैसे स्टेडियम में। रास्ते पर चल रहे हैं तो सोचना पहाड़ियां जो है आसपास, या हम बीच से चल रहे हैं, रास्ते पर जो खड़े हुए लोग हैं वो हमको देख रहे हैं। हमेशा सोचो कोई ना कोई हमें देख रहा है, हम अकेले कहीं है ही नहीं। तो मन में आलस नहीं आएगा, अलसाया हुआ ये चित्त चौकस हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा, वही अटेंशन को प्राप्त होगा। इस संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां लोग हमें नहीं देख रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां सबकी नजर हम पर नहीं है और वो सब लोग देख रहे हैं। कौन लोग? मित्र तो भी ठीक है, और कौन देख रहे हैं? जिनके सामने हमने बहुत ही क्या चैलेंज किया था, जिनके सामने हमने, जिनकी आशाएं हम, कौन कौन देख रहे हैं उसकी भी लिस्ट है। एक तो वो जिनके सामने हमने चैलेंज किया था, क्या कि असंभव संभव करके दिखाएंगे, अपवित्रता हमारे जीवन में आ नहीं सकती, संकल्प में भी स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जिनके सामने हमने की थी वो हमें देख रहे। एक दूसरे हमें कौन देख रहे हैं? जिनकी हमसे बहुत आशाएं हैं, जो हमको बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, जो समझते हैं ये तो बहुत महान आत्मा है, हमने हमारे जीवन में कुछ हम कर नहीं सके पर ये लोग कर सकते हैं। और कौन देख रहा है? सभी वो लोग, भक्त लोग, सन्यासी लोग, और जिनके सामने हम अपना थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। हमने जहां दिखाया है हम बहुत बड़े योगी है, उनको दिखा के रखा है हमने, ऐसी बड़ी बड़ी बातें की है उनके सामने, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें की है कि हमारा तो योग ऐसा है, हमारा तो वैसा है, हमारा तो बाबा से इतना प्यार है, हमारा तो बाबा से उतना प्यार है, हम तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम तो इतने समय से बाबा के बन गए, हम तो इतनी बार बाबा से मिले हैं, तुम तो अभी अभी आए हो, हम तो बहुत पुराने हैं। ऐसी बातें हमने जिनके सामने कर रखी है, अगर उनमें से कोई हम योग में सोते हुए देख ले तो, यदि उनमें से कोई हमें भोजन इतना आसक्तिपूर्ण भाव से खाते हुए देख ले तो, जिनके सामने हम कहां है, हम बहुत महान योगी है। अगर वो हमें लड़ते हुए देख ले तो, क्रोध करते हुए देख ले तो, हमारा स्टेटस योगी बने का, ज्ञानी होने का तो वो भी तो हमें देख रहे हैं। जब वो देख रहे हैं तो हमें कुछ तो रहेगा थोड़ा भान। किसी गुरु ने अपने तीन शिष्यों को बुलाया, अब उनके जाने का समय था, शिक्षा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा वो तीन कबूतर लो और तीन कबूतरों को एक ऐसे स्थान पर जाकर मार दो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, कोई नहीं देखना चाहिए, ऐसा स्थान ले जाओ और इन तीन को एक एक दे देते हैं तीनों को, उनकी गर्दन मरोड़ दो और उनको मारकर मेरे पास लेके आओ। हाँ, जब तक नहीं मारोगे वापस मत आना, मैं मरा हुआ कबूतर ही देखना चाहता हूं, परंतु ऐसे स्थान पर मारना जहां कोई भी देख नहीं रहा हो। पहला तो सोचता है कहीं और जाने की जरूरत क्या है, कोई एक गली देखता हूं जहां पर कोई नहीं हो, आश्रम के ही पीछे देखता है वहां पर एक गली है, आजू बाजू नजर घुमाता है कोई नहीं देख रहा है, कोई राहगीर आ नहीं रहा है, जाता है और अपने शर्ट के अंदर, अपने कुर्ते के अंदर रखकर गला मरोड़ देता है और मर जाता है वो कबूतर, और लेकर आता है और कहता है कि यह कार्य तो बहुत आसान था। गुरु जी कहते हैं ठीक है रुको थोड़ा। दूसरा कहता है कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि गुरु ने कहा है तो जरूर कुछ तो राज होगा। ये सारा ही गांव इतना आसान नहीं है, कोई ना कोई तो कहां से देखता ही रहता है। चाहे किसी भी गली में चला जाओ कोई ना कोई तो देखेगा ही, सोचता है इस गांव से बाहर जाऊं, ढूंढता है एक बिहर जंगल और उसमें एक बियाबान ऐसी एक गुफा, उसमें जाता है और उस गुफा में अंधेरे में उस कबूतर को मार देता है, जहां दूर दूर तक ऐसे निर्जन स्थान पर कोई नहीं रहता है और लेकर आता है। उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन लगते हैं। तीसरा जो शिष्य है 3 मास हो जाते हैं लौटता ही नहीं। 3 मास के बाद आता है, परंतु कबूतर अभी भी जिंदा है। तो गुरु उसको कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था जिंदा के साथ नहीं आना है, जिंदा कबूतर के साथ। तो वो कहता है क्या करूं, बहुत ढूंढा, यहां गया वहां गया, संसार में यहां वहां ढूंढते रहा पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिला, आपने कहा था कोई नहीं देखना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसे एक ऐसी अंधेरी रात ऐसी जगह लेके गया कि जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था, खटाटोप अंधकार, पर देखा कि ये कबूतर ही मुझे घूर घूर के देख रहा है। सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने तो इस कबूतर की आंखों में ही पट्टी बांध दी, पर बाद में पता चला मैं खुद ही देख रहा हूं, फिर मैंने अपने ही आंख में पट्टी बांध ली, फिर मैंने महसूस किया कि स्वयं भगवान ही देख रहा है। ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहां कोई भी ना देखे, शायद ही ऐसा कोई स्थान है। हर स्थान पर कोई ना कोई हमें देख रहा है, इसके लिए यह संभव है कि सब इस कबूतर को मारा जाए। गुरु कहता है तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हुई, तुम जा सकते हो, बाकी दो फिर से कोर्स चालू, पहला पाठ मैं आत्मा हूं चालू करो, अभी फिर से वही पाठ। इस संसार में हम हीरो पाठधारी है, इस संसार में हम हीरो एक्टर्स है, मुख्य अदाकार है, मुख्य कलाकार है, हमारी भूमिका सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं भगवान के साथ तुम्हारा पाठ है। भाइयों से मुलाकात संडे की मुरली, तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हारा पाठ स्वयं भगवान के साथ है, तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हारा ऊंचते ऊंच पाठ है, तुम्हें नशा रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच पाठ ऊंचते ऊंच बाप के साथ तुम्हारा है। ऐसा जब नशा रहेगा तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, स्वयं निर्विघ्न हो जाओगे, संघ का विघ्न, वायुमंडल का विघ्न, वाइब्रेशंस का विघ्न, कोई भी विघ्न हो आ नहीं सकता। तो ऊंचते ऊंच हमारा पाठ है, श्रेष्ठ पाठ है, भगवान के साथ पाठ है, और दूसरा हम स्वयं हीरो पाठधारी है। हीरो पर सबकी नजर रहती है, कोई भी फिल्म होगी कोई भी नाटक होगा तो सबकी नजर किस पे होगी, हीरो ने क्या पहना है, हीरो की हेयर स्टाइल कैसी है, हीरो ने कितने बार कपड़े बदले, हीरो के एक एक डायलॉग लोग याद कर लेते हैं, एक एक डायलॉग जो होता है ना याद कर लेते हैं, वो फिल्म को कितने साल हो गए पर डायलॉग नहीं भूले। हमारा भी एक एक डायलॉग कैसा हो, रिकॉर्ड करने जैसा हो, ये नहीं भाषण वाली, वो दिनचर्या वाली, उसमें पता चलता है। यहाँ तो हर एक ज्ञान योग की बड़ी बड़ी बातें कर सकता है बैठकर, सच्ची परीक्षा तो रिकॉर्डिंग तो तब होती है जब 9 और 5 बजे के बीच, जब ड्यूटी का टाइम होता है तब, वो है रियल रिकॉर्डिंग। यहाँ तो अति क्रोधी व्यक्ति भी हाथ में जब माइक आता है तो महा शांति की बातें करना तो बहुत आसान है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सभी शांत है, जैसे कि चलते फिरते फरिश्ता अनुभव होता है, ये सुबह का वातावरण में ये शांति, ये रिमझिम सी बारिश, ये थोड़ी थोड़ी ठंड, और सभी ब्राह्मणों का ये संग, और सभी यहाँ योगी और तपस्वी आत्माएं दिखाई देते हैं, और अमृत वेला भी हो चुका है और बाबा के प्यार से सभी भरे हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट तो 9 बजे के बाद चालू होता है। वहाँ फिर चालू होता है, वहाँ से लाइव रिकॉर्डिंग चालू होता है। यहाँ तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो तो महान, ये तो केवल तैयारी है, बैकग्राउंड है। ये 9 बजे के पहले असली काम तो चालू होगा। जब तक मधुबन में है तब तक तो बहुत अच्छा है। असली काम तो तब चालू होगा जब ट्रेन में बैठोगे आबू रोड में, वहां से चालू होगा। और उससे भी असली काम तब चालू होगा जब सेंटर पहुंचोगे। और उससे भी असली काम आरती में तब चालू होगा तब रिकॉर्डिंग चालू होती। ये रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, यहाँ तो सभी योगी है सुबह सुबह। असली रिकॉर्डिंग तो वहां चालू होती जब घर में पहुंचोगे, वो है रिकॉर्डिंग। और जब गालियां दे और कोई विरोध करे, कोई माने ना, कोई सताए, कोई दुख दे, कोई टॉन्ट करे, कोई कमेंट करे, तब है असली रिकॉर्डिंग। ये तो कुछ भी नहीं है, यहां तो हर एक योगी बन जाएगा। तो हीरो पार्ट, बेस्ट डायलॉग का अवार्ड चाहिए ना, बेस्ट डायलॉग्स फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायलॉग का अवार्ड देते। ऑप्शन दे,
कुछ जाने वाला है।